तो नमस्कार, आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पासुरकर। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ रूबरू होने जा रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख पन्नासे सर जी। नमस्कार सर जी।
नमस्कार नमस्कार पातुरकर साहब
सर जी, आज
जी।
हम आपसे जानना चाह रहे कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है
हाँ
और बदलते मौसम से किसानों
हाँ
पर खेती किसानी पर किस तरह से असर होता है।
जी 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 तो सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पन्ना से कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूँ। ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का उपक्रम है और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आता है। यह आपको सभी को विदित है, छिंदवाड़ा वासियों को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज पूरे राष्ट्र विश्व अपने राष्ट्र में किसान दिवस बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है। इसकी मैं सबको, सारे किसान भाइयों को बधाई देता हूं। जो युवा किसान है, जो युवा अपने हमारे किसान हैं, महिलाएं हैं, कृषक महिलाएं, इन सभी को खूब सारी बधाइयां आज के दिवस के उपलक्ष्य में। जैसा कि पातुरकर जी ने बोला है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि मौसम परिवर्तन हुआ है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ये कहने के लिए बड़ा सरल शब्द है, लेकिन आज पूरे विश्व की परिस्थिति इसी के अनुरूप घूम रही है। तापक्रम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारे जो ग्लेशियर हैं, जो समुद्र के बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। और इसका कारण ये होगा कि गर्मी बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये पिघलते जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े शहर हैं, कुछ आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में ये विलुप्त हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ये तो एक बहुत बड़ी विभीषिका है। दूसरा कारण यह है कि अब हमारे किसानों की फसलों ने भी अपना रुझान बदल दिया है, अपना व्यवहार बदल दिया है, जिस कारण जो वांछित उत्पादन किसानों को मिलना चाहिए वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ चीजें ऐसी है कि जितना हमको उत्पादन मिले, जैसे कपास का उदाहरण ले, हमारे क्षेत्र में सौंसर पांडुना में सबसे ज्यादा कपास होती है। कहना चाहिए एरिया हमारे यहाँ कम है, लेकिन उत्पादकता ज्यादा है। और इसी के साथ साथ उत्पादन कैसे कम हो रहा है कि हमारे पास बीटी कॉटन आया है, पहले हाइब्रिड कॉटन था, फिर बीटी कॉटन आया, और इसके अंदाज से देखा जाए तो किसान लोग जो अच्छी खेती कर रहे हैं किसकी, तो 18 कुंटल से 20 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले रहे हैं। लेकिन हमें इतना भी उत्पादन नहीं चाहिए, हम इतनी सेवा नहीं कर सकते। हमको उत्पादन चाहिए मुश्किल से 10 कुंटल 12 कुंटल यदि प्रति एकड़ मिल जाए तो हमारे किसानों को काफी लाभ होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति अब यह मौसम परिवर्तन की वजह से नहीं बन रही है। किसी को 5 कुंटल, किसी को 3 कुंटल, ऐसी स्थिति बनी हुई है। रेट ज्यादा जरूर मिल रहा है आपको, लेकिन उत्पादन कम हो गया है, उत्पादन कम हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ऐसी फसलों का चयन करना पड़ेगा कि जिसमें सिंचाई के लिए पानी कम लगे, जमीन कम लगे, जमीन हल्की हल्की जमीन में हमारा काम हो जाए, जिस जिस जमीन को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है उस जमीन को छोड़ के ऐसी जमीन ले, जैसे सरसों की फसल। आज हमारे छिंदवाड़ा जिले में हल्की जमीन है जहां पानी की भी व्यवस्था नहीं है, और सरसों हल्की जमीन में भी आ जाती है, जिसके मात्र 2 पानी की आवश्यकता होती है, और उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है, 6 कुंटल से 5 कुंटल से 12 12 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है, और उसके रेट भी अच्छे थे। पिछले साल 7 6 हजार से 7 हजार के बीच थे, काफी लोगों ने फायदा उठाया। तो हमारे कृषि विभाग और कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, इनने मिलकर पिछले साल 11 हजार हेक्टेयर का हमने पूरा जिले में विस्तार किया था। इस साल करीब करीब 30 से 40 हजार हेक्टेयर का विस्तार का हमारा लक्ष्य है, और जो करीब करीब पूरा हो चुका है। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि मौसम परिवर्तन की वजह से अभी जो ठंड पड़नी चाहिए अभी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से जल्दी फूल आ रहे हैं सरसों में, और हमें ऐसा लग रहा है कि कि जिनने जिन भाइयों ने अक्टूबर में इसकी बोनी कर दी है उनको उत्पादन कम मिलेगा। ये फसल ठंड की फसल है तो इस पर ठंड होना जरूरी है। तो हम लोगों को ऐसी फसलों का चयन करना पड़ेगा कि यदि मान लो उसमें कुछ नुकसान भी हो गया तो उसकी भरपाई किसान की अपने आप हो जाए। एक सरसों हो गया, ऐसी कपास सब लगानी पड़ेगी हमको कि जिसमें स्प्रे की कमी हो, जैसे खूब स्प्रे नहीं करना पड़े। उसके लिए हमको जमीन का सुधार करना पड़ेगा। जितना ऑर्गेनिक मैटर, जितना जीवाश्म हमारे जमीन में होगा उतनी फसल कपास की अच्छी होगी, स्प्रे कम लगेंगे, खाद कम लगेगी और किसानों को अच्छी क्वालिटी का कपास मिलेगा। मैं पिछले 8-10 साल से इसी के ऊपर एक प्रयोग कर रहा हूं कि जितने जीवाश्म हमारे खेत से निकलते हैं वो सारे के सारे जमीन में मिलाना जरूरी है। इनको मिलाने के बाद आप देखेंगे 3 साल बाद आपको चमत्कार दिखने लगेगा कि आपका नंबर ऑफ स्प्रे कम हो गए और खाद की मात्रा कम हो गई। एक प्रकार से हम जैविक के ऊपर अग्रसर होंगे, जिसका कि हमें बहुत दिनों से इंतजार था कि हम जैविक की बड़ी सरकार भी बात कर रही है, सारे वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। तो हम जैविक के ऊपर जाने के लिए एक सबसे अच्छी सीढ़ी है कि हमारी जमीन की दशा हमको सुधारनी होगी। उसके लिए जितने भी जीवाश्म निकलते हैं हमारे खेतों से, जितना कचरा निकलता है, जितना बायोमास निकलता है, उसको हमको वहीं के वहीं सड़ाना है, उसमें लेबर ना लगे और वहीं सड़ जाए। तो इससे उत्पादन में हमको आशातीत बढ़ोतरी मिलेगी और कम खर्चे में हमको उत्पादन मिलेगा। मैं उसका ज्वलंत उदाहरण मैं खुद हूं, मैं भी किसान हूं इस जिले का और मैं खुद देख रहा हूं कि मैंने मात्र एक स्प्रे किया है और एक बार खाद डाली है, जबकि लोगों ने 3-3 बार 4-4 बार खाद डाली है, 4 स्प्रे हो गए हैं, उसके बाद भी वो जो समस्या है उनकी वो खत्म नहीं हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमको थोड़ा उत्पादन कम मिले लेकिन बिना खर्चे के मिले, बिना लागत के मिले, कम लागत के मिले, तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा।
सर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम के लिए ऐसे कौन से कारक जिम्मेदार है जिसके कारण यह मौसम परिवर्तित हो रहा है।
हाँ, ये बहुत मुद्दे की बात आपने पूछी है पातुरकर जी, कि मौसम परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा तो जंगलों की कटाई, अंधाधुंध जितना भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, आपको विदित में बता दूं एक आंकड़ा, पूरे विश्व में प्रतिदिन 2000 हेक्टेयर जंगल कट रहे हैं और उसका दुष्परिणाम ये हमको देखने को मिल रहा है। तीसरा, ये गैसें जो है, गैस जिसको बोलते हैं ये अपने एसी की गैसें जो अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो गैस का हमको बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना।
हाँ जी।
और जंगल के लिए एक हमको उपाय करना पड़ेगा कि देखो, जल से जंगल नहीं है, जंगल से जल है, जंगल है तो जल है, लेकिन हम जंगल को ही काट के खत्म कर रहे हैं, तो इसका परिणाम बड़ा भयानक हो रहा है और बड़ा बीभत्स होने वाला आगे चल के। इसलिए सरकार ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को ये सिखाएं कि अपने जीवन में कम से कम 1000 झाड़ जरूर लगाएं, पौधे जरूर लगाएं, ताकि इसका जो एक इको बैलेंस है ये बना रहेगा और बन जाएगा। अभी तो बहुत विपरीत दुर्दशा हुई है क्योंकि हमारे चारों तरफ वेजिटेशन है ही नहीं। गर्मी के दिनों में आप देख रहे होंगे कि जितने भी झाड़ ऐसे झुलस जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा कि क्या होगा। इसलिए हमको पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है, उसके कटाई के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए, बिल्कुल सख्ती होना चाहिए, और जितना भी बायोमास निकलता है ये सब जमीन में सड़ाना है, जमीन में मिलाना है, और रसायनों का उपयोग हमको कम करना है क्योंकि इसके रसायनों के कारण भी हमारी जमीन की जो पोत है, जो वापसा है, वो खत्म हो गया है, जीवाणुओं का नाश हुआ है, जो सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी नंगी आंखों से हमको दिखते नहीं है उनका विकास होना चाहिए। वो भूखे पड़े हुए हैं, अंदर जीवाणु असंख्य मात्रा में है, जैसे ही उनका उनको खाद्य मिलता है वो फिर से सक्रिय हो जाते हैं। आज भी हमारे लिए वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन हमने उनका जो भोजन है वो खत्म कर दिया है, उनको लाना बहुत जरूरी है, यही मैं कहूंगा। और अनुकूल फसलें लगाएं, एक फसल कोई लगाता है, जैसे टमाटर लगा रहे तो टमाटर लगा रहे तो अभी 3 रुपए किलो नहीं पूछ रहा कोई, ये स्थिति निर्माण नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, गरीब के घर से लेके अमीर के घर में जो चीज लगती है, जो पकती है, वो चीज जरूर लगाओ, लेकिन स्थिति देख के, समय देख के, मौसम देख के, परिस्थितियां देख के, ये सारी बातें।
सर सर जी, जैसा कि आपने अभी फसलों को लेकर बोला तो आप फसल चक्र की बात कर ले, तो थोड़ा फसल चक्र भी
हमारे फसल चक्र की बात नहीं कर रहा हूँ, हमको मौसम जो परिवर्तन हो गया है उसके हिसाब से फसलों का हमको चयन करना पड़ेगा, स्वयं के विवेक से ही करना पड़ेगा कि कौन सी फसल किस समय काम देगी
जी।
इसलिए हमको फॉरेस्ट के तरफ जाना जरूरी है, हमारे खेतों में भी 1-2 एकड़ के फॉरेस्ट लगानी चाहिए, जैसे नीलिया डूबिया है, ऑस्ट्रेलियन टीक है, ऐसे फास्ट ग्रोइंग प्लांट जो है, जो जल्दी बढ़ने वाले पौधे हैं, जो 12 साल में तैयार हो जाते हैं, उसकी अच्छी आय भी मिलती है, उसके ऊपर शासन का कोई अंकुश भी नहीं है कि ये नहीं बेच सकते, किसान आराम से तोड़ के अपनी आजीविका कमा सकते हैं। तो उसको एक बार यदि लाभ मिल जाए जंगल लगाने से खेत में, तो वो दूसरा जंगल भी तैयार कर लेगा उसको काटने के बाद। तो इसके साथ साथ उसको एक सघन खेती का प्रयोग करना पड़ेगा, ये नहीं तो ये फसल नहीं तो दूसरी फसल, ये फल वाली फसल नहीं तो दूसरी फल वाली फसल, ये सब हमको चयन करना पड़ेगा। और ये स्वविवेक, और जहां जहां ये कृषि के कार्यक्रम होते हैं, जहां जहां मेले होते हैं, वहां किसान भाई जरूर जाएं और वहां देखें कि क्या हो रहा है, और उससे सीख के हम अपना लाभ अर्जित कर सकते हैं। और ये वायु पर जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसका प्रभाव हो रहा है, सब मिलके यदि हम काम करें, एक आदमी के बस की बात नहीं है, सारा समुदाय, सारे लोग, सारे किसान, सारे गांव मिलके जंगल लगाने का काम करें और कटाई बंद कर दे जंगलों की, ये मेरा कहने का है।
सर जी, हम आपसे और एक जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक जिला एक उत्पाद,
हाँ,
पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में एक जिला तीन उत्पाद की बात हो रही है।
हाँ,
संतरा,
मक्का और आलू,
आलू और संतरा,
संतरा। अब मैं आपको बता दूं, एक जिला एक उत्पाद की बात है, हमारे यहाँ 11 कहना चाहिए 11 ब्लॉक है, हमारे 11 विकास खंड है, और 11 विकास खंड में से 2 विकास खंड एक ऐसे हैं सौंसठ पांडुरना कि जो आपस में मेल खाते हैं, बाकी सारे विकास खंड एक दूसरे से मेल नहीं खाते, सबकी सबकी टोपोग्राफी कहना चाहिए भौगोलिक स्थिति बिल्कुल विपरीत है, तामिया अलग है, अमरवाड़ा अलग है, चौरी अलग है, जुन्नारदेव अलग है, परासिया अलग है क्योंकि वहां कोल माइंस का एरिया है, यहां संतरा है। तो प्रमुखता से वो इसलिए ली गई वो तीन फसलें कि संतरा तो हमारे क्षेत्र के लिए हो गया, सौंसर पांडुना के लिए, आलू हो गया छिंदवाड़ा चौरई इनके लिए, तामिया के लिए हो गया कौन सा संतरा, संतरा आलू, आलू वहां के लिए हो गया, और मक्का हो गया बाकी क्षेत्रों के लिए, जैसे अमरवाड़ा हो गया, तामिया हो गया, यहाँ प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में मक्का होता है। तो ये बातें हैं, तो इसलिए वो रखी गई है कि हमारी विविधताएं बहुत है, जैव विविधता हर विकास खंड की अलग अलग है, इसलिए उनको तीन को रखा गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच से रूबरू होकर किसानों एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी की वो परिवार की ओर से भी समस्त किसान भाइयों को राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।
जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः सारे किसान भाइयों को ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिवस पे, दिवस के लिए बहुत बहुत नमस्कार।